श्री भगवानुवाच इदान्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए यहाँ भगवान सबसे पहले इदम माने यह शब्द का प्रयोग करते हैं। उस भगवान के मन बुद्धि में स्थित तत्व की महिमा कहने के लिए ही उसको गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्वगुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे 9 के 34वें मनमना भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्वगुह्यतमम कहकर पीछे मनमना भव कहा है। तात्पर्य यह है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है, जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी दोष दृष्टि है उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले जा सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को अच्छी तरह से कहूंगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूंगा और उसके उपायों को भी कहूंगा। प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव यह भी है कि उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी है, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर सकता है। ये बात मैं विशेषता से कहूंगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी उतनी बातें वे नहीं कह सके, इसलिए भगवान ने यहाँ तू पद देकर यह बताया है कि उसी विषय को मैं फिर कहूंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसी दृढ़ता से मानना ज्ञान है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये दो विशेषण आए हैं। ज्ञान विज्ञान संबंधी विशेष बात। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तो अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान विज्ञान ही राजविद्या, राजगुह्य आदि है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। पहले से 3रे श्लोक। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया है। अव्यक्त मूर्ति मुझसे ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, सब कुछ मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। चौथे से छठे श्लोक तक ये सब कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है। प्रकृति के पर्वस्वे संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूं, परंतु वे कर्म मुझे नहीं बांधते, उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूं। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा कर्म ज्ञान सब व्यर्थ है। महात्मा लोग देवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं आदि आदि। सातवें से पंद्रहवें श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं क्रतु यज्ञ स्वधा औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं हूँ। कार्य कारण रूप से जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक। जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है, और जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। इसके आगे के पांच श्लोक 30वें से 34वें तक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कह दिए गए हैं। ज्ञान के वर्णन में विज्ञान और विज्ञान के वर्णन में ज्ञान नहीं है, ऐसा भाव नहीं समझना चाहिए। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से ही मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, अतः मुक्ति उसी से ही होती है जो अपना नहीं है। किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है, इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से ही है, अर्थात मैल और कपड़ा दो है एक नहीं है। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, माने मेला चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है, भगवान के सन्मुख हो जाता है, तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है। उसका संसार से संबंध भी छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहां अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, संसार प्रकट है, कर्मयोग माने निष्काम भाव प्रकट न होने से गुह्य है, उससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग आत्मयोग गुह्यतर है, ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग माने परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में प्रेम ये गुह्यतम है। गुह्य और गुह्यतर तो लौकिक है, पर गुह्यतम अलौकिक है। ब्रह्म लोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति होने से अशुभ है। आठवें अध्याय का 16वां। गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहां अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचन मात्र भी सत्ता न रहे, अहम की यह सूक्ष्म गंध भी न रहे जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है, इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि इसमें विशेष ज्ञान